मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 18 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब आइए थोड़ा सा अलग अलग विषयों पर भी, हालांकि अलग अलग विषय जरूर मैं कह रहा हूं लेकिन है ये जीवन से ही जुड़े हुए, लेकिन थोड़ा सा उसका टेक्सचर बदलते हैं और अलग अलग विषयों पर भी लाइफ मैनेजमेंट के तहत कुछ बातें करते हैं। अभी तक ज्यादातर जो मेरे विषयों का जो केंद्र था वो जीवन के जो कोर एरिया होता है, जिसका संबंध आप यूं कह सकते हैं कि हमारे जीवन की उपलब्धियों से, सफलताओं से, मन स्थितियों से होता है, उन पर हम लोग बातचीत करते रहे हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ उनसे हटकर भी बात की जानी चाहिए। हटकर बात की जानी चाहिए का मतलब ये कतई नहीं है कि उनका जीवन से कोई संबंध ही नहीं होगा। कोई घटना, कोई बात ऐसी होती ही नहीं है जिनका संबंध जीवन से न हो। हर बात जीवन से जुड़ी हुई है। यह बात अलग है कि वह कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, किस तरीके से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट जुड़ी हुई है या इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, किस सीमा तक हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, और साथ ही यह भी कि हमें अपने जीवन में उस बात को कितनी अहमियत देनी है, यानी कि हमारी प्राथमिकता की सूची में वह बात कहां पर होगी। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हमारे जीवन में जो इमरजेंसी की स्थिति आती, जो आपातकाल जिसे हम कहते हैं, इनफैक्ट वो आपातकाल क्या है। दरअसल कल जब मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जो एम्बुलेंस कार है वो लगातार हॉर्न देती हुई जा रही थी। बारिश खूब हो रही थी, ट्रैफिक जाम भी कहीं था, रास्ता भी खराब था। अखबारों में आपने बीच बीच में पढ़ा होगा कि किस तरह से ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं मिला और इसके कारण जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई। इस तरह की घटनाएं अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिल जाती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इन सब मुद्दों पर भी थोड़ी बात की जानी चाहिए। तो मित्रों आज मैं हमारी जिंदगी में जो अचानक कुछ घटनाएं घट जाती हैं उन पर बात थोड़ा सा करना चाहूंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, मुझे लगता है कि इनफैक्ट जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं वो इमरजेंसी होता क्या है। देखिए बहुत लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिन्हें सामान्य सी बातें भी इमरजेंसी लगती हैं, कि छोटी सी घटना घटी थी उनको लगता है कि कोई आपातकाल आ गया। वो आपातकाल उसे इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें उस समय कुछ सूझता नहीं है कि अब इसका मुकाबला करने के लिए हम क्या करें, क्या कदम उठाएं। तो लगता है कि नहीं इमरजेंसी आ गई। तो ये तो देखिए बहुत कुछ अपने अपनी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि जो हमारी मानसिक मजबूती है वह कितनी है। जो बहुत ही मानसिक रूप से अपने को मजबूत महसूस करते हैं वो डेफिनेटली फिर छोटी छोटी चीजों को ही इमरजेंसी में कन्वर्ट नहीं करते, और जो बहुत कमजोर महसूस करते हैं पता लगा कि उन्हें छोटी छोटी बातें भी इमरजेंसी लगने लगती हैं। बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए तब भी कुछ लोग आराम से उसका डटकर मुकाबला करते हैं, घबराते नहीं हैं, जबकि कहीं थोड़ी सी बारिश ज्यादा आ जाए तभी कुछ लोग घबरा जाते हैं। तो पहली बात तो आपको अपने दिमाग में ये तथ्य रखना चाहिए कि इमरजेंसी जो है बहुत कुछ हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। बहुत कुछ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ हमारी मानसिक स्थिति पर ही डिपेंड कर रहा होता तो बाहर इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई होती। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो मालूम है कि उसमें इमरजेंसी ब्रेक होता है। ट्रेन में भी इमरजेंसी ब्रेक होते हैं, इमरजेंसी ब्रेक, तो वो क्यों है? देखिए वो ब्रेक नहीं है, ब्रेक तो सामान्य रूप से गाड़ी में है जिनका हम हर समय इस्तेमाल करते रहते हैं। इमरजेंसी ब्रेक का यह मतलब है कि जब दूसरे ब्रेक रोकने के सारे तौर तरीके फेल हो जाएं, और एक ही तरीका होता है गाड़ी में तो समझ लीजिए कि ब्रेक ही होता है, अगर वो फेल हो जाए, काम नहीं कर रहा है, तब चूंकि जीवन अब खतरे में है तब आप इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करें। तो व्यवस्था की गई, यानी कि हम ये माने कि इमरजेंसी नामक चीज होती भी है। अब दूसरे क्षेत्रों में आप देख लीजिए, जिस एम्बुलेंस की मैंने चर्चा की, इमरजेंसी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, अचानक हार्ट अटैक हो गया तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि आप उसे इमरजेंसी का नाम दें और तुरंत पेशेंट को किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाएं। और इसीलिए एम्बुलेंस, उसकी व्यवस्था क्या की गई, एम्बुलेंस, देखिए कि अब व्यवस्था के तहत एम्बुलेंस के को विशेष अधिकार दिए गए हैं कि उसमें लाइट होगी, वो हॉर्न बजाएगा और ट्रैफिक रूल्स के तहत भी अगर आपको एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है तो आपको चाहिए कि आप उसे साइड दे दें, उसे निकल जाने दे। यहां तक है कि अगर कहीं रेड लाइट है तो एम्बुलेंस को यह अधिकार है कि वो उस रेड लाइट को भी क्रॉस करके पेशेंट को किसी भी हालत में हॉस्पिटल तक पहुंचाए। तो ये वहां भी इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है, यानी कि इमरजेंसी चीज तो होती है। राष्ट्र के लिए आप देख लीजिए, आपातकाल, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि आपातकाल भी लगाया जाता, इमरजेंसी लगाई जाती, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। जब यह समझा जाए कि नहीं, देश की एकता और अखंडता को खतरा है, कोई विदेशी आक्रमण होना है, तो आप इमरजेंसी लगा लेते देते हैं। और इमरजेंसी लगाने के लिए, देखिए, लगाने के बाद सरकार को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, यहां तक कि वो बहुत से कुछ मौलिक अधिकार भी वो स्थगित कर सकती है, क्योंकि उसे अब यहां जो सवाल है वो देश की रक्षा का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो दोस्तों, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इमरजेंसी जैसा जो तत्व होता है, या कह लीजिए कि जो सिचुएशन होती है, वो एग्जिस्ट तो करती है, उसका अस्तित्व तो है। अब आप देखिए कि ये बेसिकली है, जब सामने हमारे उपस्थित हो जाता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट देखिए, मान करके चलिए कि अगर वो रियल में इमरजेंसी है तो वो बहुत ही निर्णायक घड़ी है। उसके बारे में अब हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि यार ये इमरजेंसी है कि नहीं है। वो बहुत ही निर्णायक इस मायने में है कि हमारी थोड़ी सी देरी, हमारी थोड़ी सी चूक पता नहीं कितनी बड़ी घटना को जन्म दे देगी। हम नहीं जानते, आप अक्सर अखबारों में पढ़ लेते होंगे कि बस थोड़ी सी देरी हो गई, अगर थोड़ी सी जल्दी हो गई होती तो उसकी जान बच जाती। अभी आप सुरमा फिल्म में भी आपने ये देखा कि वो कहा गया है कि गोली लगने की अगर 6 घंटे के अंदर संदीप सिंह का इलाज कर दिया गया होता तो वो पैरालाइज नहीं होते। तो यहां भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन आप देख रहे हैं, 6 घंटे। तो इसलिए मित्रों, निर्णायक तो बहुत होती है ये, इसमें मतलब ये मान करके चलिए कि वहां। दूसरी चीज, चुनौतीपूर्ण भी बहुत होती है, वो आपके सामने एकदम से एक चैलेंज प्रस्तुत करता है कि देखते हैं आप इसका कैसे सामना करेंगे। और जब घटना घटित होती है, देखिए वो अचानक होती है। एक तो है कि भाई चलिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और फिर बाढ़ आ गई, तो आदमी पहले से थोड़ी सी व्यवस्था करता रहता है। दूसरा, पता लगा कि बांध फूटा और बाढ़ आ गई, तो अब जब बांध फूट गया है और बाढ़ आ गई है तो ये तो सब कुछ अचानक हुआ है, अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भूकंप आ गया, बिल्कुल अचानक हो रहा है। इमरजेंसी आप स्थितियों का मुकाबला करने के लिए आप अपने दिमाग को भी ज्यादा से ज्यादा फिर एक्टिवेट करेंगे, और यही चुनौती कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हमें देती है कि आप उसका मुकाबला कैसे कर पाते हैं। क्योंकि वहां अगर हम जरा सा चूके तो जैसा कि मैंने कहा कि वह निर्णायक घड़ी होती है, फिर उसकी कीमत इतनी अधिक चुकानी पड़ती है, मतलब ये कह लीजिए कि फिर कोई भरपाई जैसी स्थिति होती ही नहीं। अब सवाल ये है कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। मित्रों, पहली बात जो मुझे लगता है वो ये, हालांकि ये पूरी तरह से आपकी अपनी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है, और वो ये कि किस तरीके से आप अपने संतुलन को बनाए रख पाते हैं। संतुलन, बैलेंस, इसे आप चाहे धैर्य कह लीजिए, चाहे आप इसे साहस कह लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा आंतरिक संतुलन बिगड़ता है तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, खत्म न भी कहें तो कम पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। और यूं कह लीजिए कि सही निर्णय लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान व्यक्ति एक प्रकार से इमोशनल ग्रिप में आ जाता है। उसके परिणाम फिर बाद में मैं बता चुका हूं कि बड़े बड़े भयानक हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो कोशिश होनी चाहिए, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रख पाना कि ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। दूसरी चीज, आप जिसकी भी जरूरत समझते हैं, जो भी आपको अपना मददगार लगता है, आपको चाहिए कि आप तुरंत किसी भी स्थिति में उसे मदद के लिए बुला लें। यहां तक कि अगर उस सिचुएशन में आसपास आपको कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा है तो आप संकोच तोड़ दीजिए, कोई भी स्थिति हो उसके पास जाइए, मदद की गुहार लगाइए, भले ही वह इनकार कर दे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई कसर उठाकर नहीं रखनी है। और तीसरी जो बात होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि हमें जीवन के कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी जानकारियां भी होनी चाहिए। सामान्य तौर पर जैसे एम्बुलेंस गाड़ी आपको बुलानी है उसका नंबर क्या है, फायर ब्रिगेड आपको बुलाना है उसका नंबर क्या है, थाने का नंबर क्या है, हॉस्पिटल के डॉक्टर का नंबर क्या है, आपके अपने कोई डॉक्टर हैं उनका नंबर क्या है, नजदीक में और कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये सारी चीजें या तो हमारे दिमाग में दर्ज हो, नहीं तो आज के तो मोबाइल नंबर में सारी चीजें, मोबाइल में आप सारी चीजें ये नंबर डाल सकते हैं, वहां दर्ज हो। तो हमें पहले से ये सारी व्यवस्था करके रखना चाहिए। अगर आप पहले से व्यवस्था कर लेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब इमरजेंसी आएगा तो वो आपकी घबराहट को वो कम कर देगा, क्योंकि आपके पास एक नेट है जो आपको संभाल लेगा। अदरवाइज तो पता लगा आप नंबर ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसमें घबराहट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने इमरजेंसी के बारे में कुछ बातें की हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबने इमरजेंसी को नए संदर्भों में समझने की कोशिश की होगी। यहां दोस्तों, मैं चूंकि इमरजेंसी की बात हो रही है तो मैं एक बात आप लोगों से इसी के संदर्भ में और कहना चाहूंगा, और वो ये है कि जो डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से आप लोग जीवन की समस्याओं पर बात करते हैं, थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखें कि अब उनके लिए जो बात करने के लिए सबसे सुटेबल टाइम होगा वो होगा शाम को 6 बजे से लेकर के, इनफैक्ट समझिए कि 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक शाम को आप उनसे अपने जीवन की समस्याओं पर बात कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को बहुत इमरजेंसी है, इमरजेंसी क्या है मैंने अभी आपको बताया है, अगर किसी को इमरजेंसी है फिर वो किसी भी समय उन्हें फोन कर सकता है। तो मित्रों, मुझे ये सूचना देनी थी। तो डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का जो मोबाइल नंबर है मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूं, 9644624449, ये उनका मोबाइल नंबर है। तो अब टाइमिंग्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 6 बजे से 9 बजे तक का समय है शाम का, और अगर इमरजेंसी है तो फिर इमरजेंसी के लिए तो आप जानते हैं कि कोई वक्त ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।